ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजघाट में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेल बोगी का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थी कोचिंग योजना में छात्राओं के लिए 100 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई। राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण दिल्ली के खेतों में बायो डिकम्पोजर का निःशुल्क छिड़काव करवाएगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा आरआरटीएस कॉरिडोर पर बन रहे न्यू अशोक नगर स्टेशन पर 900 सोलर पावर पैनल लगाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत इस महीने की 25 तारीख तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर दिल्ली की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अदालत के समक्ष अपना पूरक आरोप पत्र दायर किया था। उधर सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक मुख्यमंत्री केजरीवाल की उस याचिका पर अपना फैसला नहीं सुनाया है जिसमें उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत की मांग की है। इस बीच इसी मामले में आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक को आज दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी दर्शन में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेल बोगी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन अनेक लोगों के लिए प्रेरणा है और उनका अहिंसा का सिद्धांत वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति में दुनिया भर में अभी भी प्रासंगिक है।
आज उनकी मृत्यु के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी गांधी का दर्शन और गांधी का जीवन पूरे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए उतना ही प्रासंगिक और उतना ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने अपने जीवन में जिन विषयों पर सर्वाधिक बल दिया, सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, ग्राम स्वराज्य, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पर्यावरण, ये आज भी विश्व के लिए उतने ही प्रासंगिक है और विश्व के अनेक अनेक संकटों के समाधान भी है।
श्री शेखावत ने कहा कि सरकार रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का पालन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के दिनों में प्रकृति के दोहन के कारण जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या बन गई है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से वृक्षों और धरती की रक्षा के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं का पालन करने का आग्रह किया। रेल बोगी के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भानु प्रताप सिंह।
लोगों में महात्मा गांधी के सिद्धांतों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस बोगी को खास तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इस बोगी को गांधी जी की यात्रा और यात्रियों के साथ उनकी बातचीत को दर्शाने वाली मूर्तियों से सजाया गया है जो आगंतुकों को काफी पसंद आ रही है। महात्मा गांधी की रेल यात्राओं को जीवंत करती है बोगी, दर्शकों को वास्तविकता का अनुभव प्रतीत कराती है। इसका मूल उद्देश्य गांधी जी के सादगी भरे जीवन और लोगों से उनके जुड़ाव के बारे में बताना है। रेल मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई यह विशेष बोगी आगंतुकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली है। इस दौरान आगंतुक निःशुल्क इस बोगी में भ्रमण कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ये सिलिकॉन कूटनीति का युग है और भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए हर कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश में चिप उत्पादन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि हर डिवाइस को भारत में निर्मित चिप से लैस किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया।
भारत चिप का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इसी चिप पर हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। भारत का यूपीआई हो, रुपे कार्ड हो, भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए।
अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने डिजिटल इंडिया और दूरसंचार मिशन के माध्यम से नागरिकों के हाथों में प्रौद्योगिकी पहुंचाई है। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग लेंगे। भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थी कोचिंग योजना में छात्राओं के लिए 100 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि योजना के तहत सीटें बढ़ने से गरीब वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और उनका डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना पूरा हो सकेगा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों से कहा है कि वे अपने सपने पूरा करने के लिए पैसों की चिंता न करें बल्कि अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करें।
जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो बच्चे IIT JEE नीट का एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं एग्जाम को क्लियर कर पा रहे क्योंकि उनके पेरेंट्स अच्छी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस कमी को दूर करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस देख के तो मुझे ये लगता है कि स्कीम बहुत सक्सेसफुल है और मुझे इस बात का भी भरोसा है कि जो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आई एम श्योर आप लोग एक बड़ी संख्या में JEE का और नीट का एग्जाम क्लियर करेंगे।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के हर बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए उनकी सरकार ने यह योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत हर वर्ष कक्षा 9वीं और 11वीं के 300 छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों में JEE नीट की निःशुल्क कोचिंग के लिए चुना जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के एक बयान के विरोध में आज भाजपा ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधनों के माध्यम से कई बार देशवासियों को आश्वस्त किया है कि जब तक भाजपा की सरकार है आरक्षण जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा के दौरान देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि बेरोजगार बस मार्शलों की दयनीय स्थिति के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों के बाद जब भाजपा सत्ता में आएगी तब प्रशासनिक नियमों के तहत बस मार्शलों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी ने शहर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था न होने को लेकर दिल्ली नगर निगम महापौर डॉ शैली ओबेरॉय से इस्तीफे की मांग की है। श्री विधुड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने शहर को साफ सुथरा रखने के दावे के साथ निगम का चुनाव जीता था लेकिन आज शहर में हर तरफ कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में पर्याप्त सफाई न होने से गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। श्री विधुड़ी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से भी आग्रह किया कि वे दिल्ली की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने के लिए हस्तक्षेप करें। दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओबेरॉय से आज श्री रामलीला कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में अगले महीने रामलीला का मंचन करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने का आग्रह किया। महापौर ने 3 से 13 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम में निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए संबंधित विभागों को आदेश जारी किये। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज कुल 14 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि कार्यालय को ये नामांकन पत्र भाजपा कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों से प्राप्त हुए हैं। फरीदाबाद में 5 अक्टूबर को मत डाले जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। सूची में 40 उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने सोनीपत सीट से देवेंद्र गौतम को चुनाव मैदान में उतारा है जबकि निशांत आनंद गुड़गांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। राजकौर गिल को अम्बाला छावनी सीट से और सुनील बिंदन को करनाल सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो अंतर्राज्यीय तस्करों को राजधानी के गोविंदपुरी इलाके से गिरफ्तार किया है। इनके पास से उच्च गुणवत्ता की 500 ग्राम से अधिक मात्रा में हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई है। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन और आपूर्ति में इस्तेमाल की जाने वाली 1 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी उत्तर प्रदेश से मादक पदार्थ लाकर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में उसकी आपूर्ति करते थे। केंद्र सरकार ने खालिस्तानी समर्थक समूह सिक्स फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत लगाया गया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार संगठन ने ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। केंद्र ने 2019 में संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण दिल्ली के खेतों में बायो डीकम्पोजर का निःशुल्क छिड़काव कराएगी। इस छिड़काव से धान की पराली को गलाया जाएगा ताकि शहर के वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इस संबंध में दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने आज कृषि विभाग और पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि बायो डीकम्पोजर का छिड़काव इस महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि पराली गलाने के लिए इस वर्ष 5000 एकड़ से ज्यादा खेतों में बायो डीकम्पोजर का छिड़काव करवाया जाएगा। इसके लिए किसानों से पंजीकरण करवाए जा रहे हैं और किसानों से अभी तक लगभग 850 आवेदन प्राप्त भी हो चुके हैं। श्री राय ने बताया कि किसानों को बायो डीकम्पोजर के छिड़काव के बारे में जागरूक करने के लिए दिल्ली में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। खेतों में बायो डीकम्पोजर का छिड़काव करवाना दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान का हिस्सा है। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी द्वारा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर बन रहे न्यू अशोकनगर स्टेशन पर 900 सोलर पावर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इस पैनल को स्टेशन की छत पर लगाया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 6.5 लाख यूनिट से ज्यादा की बिजली पैदा होगी। एनसीआरटीसी ने बताया कि इस स्टेशन पर वर्षा जल संचयन तंत्र भी स्थापित किया जा रहा है, जिससे स्टेशन के आसपास की हरियाली को विकसित करने में मदद मिलेगी। आरआरटीएस कॉरिडोर पर बने साहिबाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो स्टेशनों के साथ गाजियाबाद और मुरादनगर रिसीविंग सब स्टेशनों पर सोलर प्लांट पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इन स्टेशनों पर 3 मेगावाट से अधिक की बिजली उत्पादित की जा रही है। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आज हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित 63वें सुब्रतो कप फुटबॉल के अंडर 17 बालक वर्ग का खिताब टीजी इंग्लिश स्कूल मणिपुर ने जीत लिया। फाइनल में उसने मिंगकेन क्रिश्चियन हाई स्कूल मेघालय को रोमांचक मुकाबले में पराजित किया। दोनों टीमों के बीच निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजघाट में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेल बोगी का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थी कोचिंग योजना में छात्राओं के लिए 100 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई। राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण दिल्ली के खेतों में बायो डीकम्पोजर का निःशुल्क छिड़काव कराएगी। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा आरआरटीएस कॉरिडोर पर बन रहे न्यू अशोकनगर स्टेशन पर 900 सोलर पावर पैनल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।